स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 22 जून और दिन बुधवार। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन में बने रहने या निकल जाने पर बहस जारी, कल होगा जनमत संग्रह।
The European Union has been a disaster for UK trade with the rest of the world.
जानेंगे इस बारे में क्या सोचते हैं भारतीय मूल के ब्रितानी नागरिक। भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में बड़ी उपलब्धि, इसरो आज छोड़ेगा एक साथ 20 उपग्रह।
इससे ज्यादा केवल एक बारी रूस और एक बारी अमेरिका ने ही छोड़े हैं, तो हिंदुस्तान जो करने वाला है ये एक बहुत यूनिक मिशन है।
अखबारों की समीक्षा और खेल समाचार भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रभात पांडे से। यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन बना रहे या नहीं, इसे लेकर बीबीसी वन में 6000 लोगों के सामने बहस हुई। यूरोपियन यूनियन में बने रहने की वकालत करने वाले कैंपेन रिमेन और अलग होने की वकालत करने वाले कैंपेन लीव ने इस बहस में हिस्सा लिया और अर्थव्यवस्था, व्यापार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपने अपने तर्क पेश किए। ब्रिटेन के यूनियन में भविष्य को लेकर कल जनमत संग्रह होगा, जब ब्रिटेन के लोग तय करेंगे कि ब्रिटेन को इसमें बने रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए। लीबिया की राजधानी त्रिपोली से सटे एक शहर में हुए धमाके में 25 लोगों की मौत हो गई है। अब तक पता नहीं चल पाया है कि यह धमाका हुआ कैसे। यह धमाका स्थानीय नागरिकों और कुछ हथियारबंद लड़ाकों के बीच संघर्ष के बाद हुआ। धमाका किसने और कैसे किया, इसकी जानकारी अभी नहीं लग पाई है। अधिकारियों ने शुरुआत में बताया था कि विस्फोटक सामग्री में आग लग जाने की वजह से हादसा हुआ, तो एक स्थानीय नागरिक ने बीबीसी को बताया कि पटाखों से भरी एक लॉरी में विस्फोट होने से ये हादसा हुआ। बीबीसी उत्तरी अफ्रीकी सेवा के संवाददाता राणा नावेद के मुताबिक इलाके में हालत बेहद तनावपूर्ण है। इराक में अमरीकी फौज के एक कमांडर ने कहा है कि इराकी फौज अब तक फलूजा के एक तिहाई हिस्से पर ही कब्जा कर पाई है। अमरीकी कमांडर का ये बयान इराकी सरकार के उस दावे से बिल्कुल अलग है जिसमें इराक ने पूरे फलूजा पर कब्जे की बात कही थी। 4 दिन पहले ही इराक ने दावा किया था कि इस्लामिक स्टेट के कब्जे से फलूजा को छुड़ा लिया गया है, लेकिन पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक कहते हैं कि वहाँ पर कब्जे के लिए संघर्ष अब भी जारी है। इराकी सेनाएं फलूजा के 5 से लेकर 10% हिस्से पर रोजाना कब्जा कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हमारी लड़ाई जारी है, हमें सावधानी इसलिए बरतनी पड़ रही है क्योंकि हम आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस मुहिम में हमारी वायुसेना इराकी फौज का साथ दे रही है। पिछले 4 सप्ताह में हमने इस्लामिक स्टेट पर 85 हमले किए हैं और फलूजा में हम उन पर रोज हमले कर रहे हैं। ये थे पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस ने विश्व एथलेटिक संघ पर आरोप लगाया है कि वो रूसी खिलाड़ियों को डोपिंग में फंसाकर वहां खेलकूद के माहौल को खत्म करना चाहता है। विश्व एथलेटिक्स संघ ने रियो ओलंपिक की ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में रूसी खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर रोक को बरकरार रखा है। इसके बाद रूस के खेल मंत्री ने ये बात कही है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कहा कि रूस और कीनिया के एथलीटों को रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए एक और टेस्ट से गुजरना होगा। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जून की 22 तारीख और दिन बुधवार। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रिटेन से। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना रहेगा या उससे बाहर निकल जाएगा, इसके लिए वहां गुरुवार यानी कल जनमत संग्रह होगा, लेकिन उससे पहले इस बात को लेकर पूरे ब्रिटेन में बहस जारी है। एक तरफ हैं ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में बने रहने की वकालत करने वाले जिन्हें रिमेन कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ हैं लीव यानी यूरोपियन यूनियन से अलग होने की वकालत करने वाले। दोनों ही पक्षों के बीच कल वेम्बले में 6000 लोगों के सामने बहस हुई। इसका संचालन बीबीसी ने किया और 2 घंटों तक चली इस बहस को बीबीसी वन पर लाइव दिखाया गया। सुनिए प्रभात पांडे की रिपोर्ट।
यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के भविष्य को लेकर होने वाले जनमत संग्रह से पहले की सबसे बड़ी टीवी बहस बीबीसी में। कैंपेन रिमेन यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के बने रहने की वकालत कर रहा है, तो कैंपेन लीव की दलील है कि ब्रिटेन की बेहतरी इस बात में है कि वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए। दोनों ही पक्ष अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा, इसे लेकर अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में बने रहकर ज्यादा महफूज है।
The evidence is undeniable and all the experts agree. We are stronger.
सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में रहकर हम ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और खुशहाल रहेंगे। बल्कि जो लोग यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात कर रहे हैं, वो भी ये बात तो स्वीकार करते हैं कि ये एक जुआ होगा। इसीलिए गुरुवार को वोट देने से पहले एक बात जान लें कि अपने फैसले के लिए आप खुद जवाबदेह होंगे, फिर उससे पलटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये थे लंदन के मेयर सादिक खान के शब्द। लेकिन यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के हिमायती इसे ब्रिटेन के लिए बेहद खतरनाक बता रहे हैं। कैंपेन लीव से जुड़ी कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद आंड्रे लेडसम का कहना है कि ब्रिटेन का हित इसी में है कि वो यूरोपियन यूनियन से आजाद हो जाए।
The European Union has been a disaster for UK trade with the rest of the world.
यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के व्यापारिक हितों के लिए तबाही साबित हुआ है। अगर हम इसमें बने रहते हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे। उनका नाकामयाब यूरो प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत महंगा साबित होगा। यूरोपियन यूनियन अपनी सीमाएं फैलाकर तुर्की को भी इसमें शामिल करना चाहता है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये थी कैंपेन लीव से जुड़ी कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद लेडसम। इस बहस में शामिल कैंपेन लीव का प्रतिनिधित्व करने वाले लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन ने जब अपनी बात यह कहकर खत्म की कि गुरुवार का दिन ब्रिटेन की आज़ादी का दिन है, तो उनके समर्थकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। दोनों ही दलों ने जोरदार तरीके से अपना अपना पक्ष रखा। अब गुरुवार को ही पता चलेगा कि ब्रिटेन के लोग क्या चाहते हैं।
ये थे प्रभात पांडे। कल होने वाले जनमत संग्रह के लिए दोनों ही पक्षों के हिमायती मतदाताओं को तरह तरह के तर्क देकर अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। इसको जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता शिवानी कुहुक ने।
लंदन के एक भारतीय रेस्तरां में खाने का लुत्फ उठाया जा रहा है, लेकिन सभी की जुबान पर ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने या छोड़ने की चर्चा है। इस मुद्दे पर बहस छिड़ी तो दोस्तों में भी मतभेद दिखे।
बोला जा रहा है कि ब्रिटेन जो है वो 350 मिलियन पे करता है हर हफ्ते ईयू को। ये एक झूठ है। अगर आप उसको रियली सही तरीके से कैलकुलेट करें तो वो एक्चुअली 190 मिलियन होता है और उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है ब्रिटेन को।
दूसरा तो मेरे हिसाब से तो ईयू से, यूके को ईयू से पार हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से जो इमिग्रेशन है उस पर कंट्रोल ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और ऑब्वियसली वी कैन सी अराउंड आवर हाउसेज एज वेल, क्योंकि वो अगर किसी भी छोटी की कंट्री में घुस जाते हैं और वहाँ से आराम से ट्रैवल करके सबसे पहले कहाँ आएंगे? यूके आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इकॉनमी इज़ मोर स्ट्रॉन्गर ओवर हियर, जॉब्स यहाँ पर हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है। पर वो जो बेनिफिट्स और पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो जो पब्लिक काम कर रही है वहाँ से पैसा आ रहा है।
लेकिन ईयू छोड़ने के हिमायतियों का कहना है कि भारत के ब्रिटेन के साथ व्यापारिक रिश्ते के नजरिए से देखा जाए तो ब्रिटेन के लिए यूरोपीय संघ में रहना नुकसानदेह है। वोट लीव कैंपेन की लक्ष्मी कौल कहती हैं,
हिंदुस्तान यूके में थर्ड हाईएस्ट इन्वेस्टर है पूरी दुनिया में, और उल्टा भी ऐसा ही है, यूके भी भारत में थर्ड हाईएस्ट इन्वेस्टर है। तो जो ये रिलेशनशिप है ये कई सालों की बनाई हुई रिलेशन है और ये ईयू की वजह से नहीं है, ये खाली यूके और भारत की आपस की जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से है। और मेरा ये मानना है कि यदि हम आउट होंगे तो हिंदुस्तान के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अब आपको बहुत बड़ी एक ग्रुप के साथ नेगोशिएट ना कर।
रिमेन कैंपेन के प्रचारकों का मानना है कि यूरोप से ब्रिटेन में बिना रोक टोक आ रहे आप्रवासियों के बारे में दहशत और नफरत पैदा कर वोटरों को यूरोपीय संघ छोड़ने की सलाह दी जा रही है। इस कैंपेन से जुड़े लॉर्ड तारिक अहमद के मुताबिक,
वो ये कहते हैं कि जो हमने ऐसे दहशतगर्दों के जो हमने इंसिडेंट्स देखे हैं यूरोप में, क्या ब्रसल्स में, क्या फ्रांस में, और इसी तरह जो हमने रिसेंटली अमेरिका में देखा है, कि वो इसलिए है क्योंकि इमिग्रेशन अनकंट्रोल्ड है। मैं समझता हूँ दिस इज़ टोटली फॉल्स, और ये आप लोगों को आप खौफ दिलवा रहे हैं दिलों में इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है।
ब्रिटेन की आर्थिक स्थिरता का हवाला देकर यूरोपीय यूनियन में बने रहने के हिमायती वोटरों से इसके पक्ष में वोट देने को कह रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन कहते हैं,
Our economic security is paramount. It is stronger if we stay.
हमारी आर्थिक सुरक्षा सर्वोपरि है, ये मजबूत रहेगी अगर हम यूरोपीय यूनियन में रहते हैं, अगर हम छोड़ते हैं तो इसे जोखिम में डालते हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन वोटरों को यूरोपीय यूनियन में रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन लोगों का मत पूरी तरह बटा हुआ है। ब्रिटेनवासी यूरोप में रहने के हक में हैं या नहीं, ये तो एक ऐतिहासिक मतदान में 23 जून को ही तय होगा। शिवानी कोहक, बीबीसी हिंदी, लंदन।
तो कल यानी गुरुवार को होने वाले जनमत संग्रह में इस बात का फैसला होगा कि ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन में भविष्य क्या होगा। बहरहाल अब चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने रामकृष्ण मिशन का दौरा किया है, जिसे कुछ दिनों पहले इस्लामिक स्टेट के नाम से धमकी भरा खत भेजा गया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने रामकृष्ण मिशन की मदद का वादा किया है और सरकार से इस मामले में सियासत नहीं करने की अपील की है। ढाका से बीबीसी बांग्ला संवाददाता कादिर कलोल की भेजी रिपोर्ट सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
बांग्लादेश में हाल के महीनों में कुछ लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। उनके खिलाफ विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन रामकृष्ण मिशन को धमकी भरा खत मिलने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हरकत में आई है और उसका एक प्रतिनिधिमंडल एकजुटता दिखाने के लिए रामकृष्ण मिशन के अधिकारियों से मिलने गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता खंडकार मुशर्रफ हुसैन का कहना है कि पहले धमकियां सिर्फ लोगों को मिल रही थीं, लेकिन अब इसका दायरा इतना बढ़ गया है कि रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं को भी धमकाया जा रहा है।
এখানে কিন্তু বৌদ্ধ খ্রিস্টান হিন্দু এবং মুসলমান মুসলমানদের অনেক বেশি এর মধ্যে হত্যা করা হয়েছে অতএব এটা কোনো
জিন লোগো কা কত্ল কিয়া জা রাহা হ্যায় উনমে হিন্দু মুসলমান সবি শামিল হ্যায় ইসলিয়ে ইসে সাম্প্রদায়িক মামলা নহি কাহা জা সকতা হ্যায় হাম ইসকে খিলাফ হ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন কো ভি ধমকি মিলি হ্যায় হিন্দু ইসসে ডরে হুয়ে হ্যায় ইসলিয়ে হমে ইয়াহা আনা পড়া।
इस प्रतिनिधिमंडल में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के कुल 9 नेता थे, जिनमें हिंदू नेता गवैश्वर राय भी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी ध्रुवेशानंद से मुलाकात की और उन्हें अपने समर्थन का वादा किया। रामकृष्ण मिशन के एक अधिकारी गुरु सेवानंद ने बीबीसी से कहा,
हमारा एक आईएस लेटर हेड एक चिठी पे चिठी एक अशुभ बार्ता नहीं हमारे पास है।
हमें कुछ दिन पहले इस्लामिक स्टेट के लेटर हेड पर लिखी गई एक चिट्ठी मिली, इसमें बड़ी अशुभ बातें लिखी गई हैं। हमने सरकार को इसके बारे में बताया, सरकार ने हमें मदद का भरोसा दिया है, बीएनपी भी हमारे समर्थन में आई है, हम सभी को धन्यवाद कहते हैं।
बांग्लादेश में रामकृष्ण मिशन को धमकी भरा खत मिलने के बाद भारत सरकार ने अपनी चिंता जताई थी। भारत सरकार का कहना है कि वो रामकृष्ण मिशन के संपर्क में है, भारतीय उच्च आयुक्त भी मिशन का दौरा कर चुके हैं। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता खंडकार मुशर्रफ हुसैन का कहना है कि चरमपंथियों से लड़ने के लिए एकजुटता की जरूरत है।
এই ধরনের যে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এর থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে একটি জাতীয় একটি সমঝোতা প্রয়োজন।
इस समय हमें राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है, हम अलग अलग रहकर इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये बात साबित भी हो चुकी है क्योंकि सरकार इस तरह के हमलों से निपट नहीं पाई है।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कहना है कि देश में जिस तरह कुछ लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिए सरकार विपक्षी दलों पर उंगली उठा रही है, जो गलत बात है। बेहतर होगा कि सरकार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करे।
तो ढाका से भेजी रिपोर्ट को सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
एक दफ़ा फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूँ इकबाल अहमद। इस वक्त हो चुके हैं 6:43 और 48 सेकंड। तो अब बात करते हैं कुछ भारतीय खबरों की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से एक साथ 20 उपग्रह छोड़ने वाला है। इन उपग्रहों को पीएसएलवी C-34 यानी C-34 लॉन्चर के जरिए छोड़ा जाएगा। इनमें भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के उपग्रह भी शामिल हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहनलाल शर्मा ने विज्ञान मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला से बात की और पूछा कि भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में क्या इसे एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।
देखिए, ये 36वां लॉन्च है हिंदुस्तान के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, वो अपने में एक कामयाबी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक खासियत यह है कि पहली बारी भारत जो है एक ही लॉन्च में 20 सैटेलाइट छोड़ने वाला है। अब 20 सैटेलाइट एक के बाद एक अंतरिक्ष में इतनी वेलोसिटी पे जब रॉकेट चल रहा हो, इतनी हाइट पे ऑर्बिट में हो, छोड़ना बहुत आसान काम नहीं है। अब इससे ज्यादा केवल एक बारी रूस और एक बारी अमेरिका ने ही छोड़े हैं। तो हिंदुस्तान जो करने वाला है ये एक बहुत यूनिक मिशन है और इसमें और भी खास बातें हैं, लेकिन एक बारी में 20 सैटेलाइट छोड़ना एक बड़ी उपलब्धि।
पिछले कार्यक्रमों की तुलना में ये कार्यक्रम आप कह रहे हैं कि काफी बड़ा है, तो किस तरह से तुलना करते हैं इसकी?
देखिए, पिछली बारी 2008 में एक बारी पीएसएलवी रॉकेट ने ही 10 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जब दुनिया का रिकॉर्ड बनाया था पीएसएलवी ने। तो उसके बाद एक ये डबलिंग कर रहा है इसरो अपनी ही काबिलियत की, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। और इसमें से 17 सैटेलाइट तो कमर्शियल लॉन्च में है, जहाँ पे कि भारत जो है कुछ ना कुछ कमाएगा इस लॉन्च से।
किन किन देशों के ये सैटेलाइट हैं इस बार?
देखिए, इस बारी जो सैटेलाइट जा रहे हैं वो इंडोनेशिया, जर्मनी और कनाडा के सैटेलाइट हैं, और एक बारी में 13 सैटेलाइट अमेरिका के छोड़ रहा है हिंदुस्तान। तो ये 13 सैटेलाइट जब हिंदुस्तान अमेरिका के छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझको ये भी दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और ज्यादा नई ऑर्बिट की ओर बढ़ रहे हैं और एक नया आयाम पकड़ रहे हैं। इसमें एक और खास सैटेलाइट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गूगल जो इतनी जानी मानी कंपनी है, उनका एक अर्थ इमेजिंग का सैटेलाइट है जिसको कि पीएसएलवी प्रक्षेपण करेगा। तो 13 अमेरिकी सैटेलाइट जिसमें एक गूगल कंपनी का भी सैटेलाइट है, तो ये एक बड़ा प्रेस्टिजियस मिशन है और ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये प्रक्षेपण जो है वो अच्छी तरह से कामयाब होगा।
जरा हमारे श्रोताओं को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बताइए कि ये क्या चीज है।
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये हिंदुस्तान का एक अपना बनाया हुआ रॉकेट है जिसका भार 320 टन होता है जब प्रक्षेपण किया जाता है, और ये 44 मीटर ऊंचा होता है, मतलब 7 मंजिली बिल्डिंग से ऊंचा होता है ये रॉकेट, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए हिंदुस्तान इसको ज्यादातर अपनाता है। और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वही व्हीकल है जिससे हिंदुस्तान ने अपना मंगलयान का मिशन और चंद्रयान-1 का मिशन भी पहले किया है। ये पूर्ण तरह भारत में बना हुआ है और ये एक बहुत ही सजा सुलझा हुआ रॉकेट है जिससे कि कई तरह के कॉम्प्लेक्स मिशंस भारत ने किए हैं।
तो ये थे विज्ञान मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला। और अब चलते हैं केरल। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केरल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के एक मंत्री ने योग और श्लोक के संबंध पर आपत्ति जताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद को लेकर केरल में भाजपा और CPM के बीच जारी तनातनी की नई कड़ी मानी जा रही है। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
योग, श्लोक और केरल जैसे राज्य में योग दिवस, ये कैसे हो सकता है कि किसी भी तरह का विवाद न हो? केरल के आरोग्य और समाज कल्याण मंत्री के शैलजा को आश्चर्य हुआ कि योग दिवस समारोह में श्लोक भी बोले जाते हैं। इधर मंत्री ने यह कहा और उधर विवाद खड़ा हो गया। इस बारे में जब हमने के शैलजा से बात की तो उन्होंने कहा,
आई डिडंट एक्सप्रेस एनी ऑब्जेक्शन, द न्यूज़ सेज़ समवट मैनिपुलेशन।
हमने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, हमारी बात बस इतनी थी कि जब आप कोई श्लोक बोलते हो तो आपको दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरे समुदाय के लोग अपने अपने धार्मिक उसूलों के तहत कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसको चिल्लाकर कहने की जरूरत भी नहीं है। इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहा है कि योग धर्म निरपेक्ष है। ये थे के शैलजा के शब्द। लेकिन BJP के राज्य अध्यक्ष कुमन्नम राजशेखरन ने बयान में उनकी निंदा की। हमने केरल BJP के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन से बात की और पूछा कि मंत्री शैलजा की बात पर उनकी क्या राय है। उन्होंने कहा,
प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य या प्रधानमंत्री जी का भाषण और इनका जो प्रतिक्रिया, ये दोनों अलग अलग है। प्रधानमंत्री जी ने कभी ऋग्वेद का कोई श्लोक के खिलाफ कुछ बोला नहीं, और ऋग्वेद का जो श्लोक है वो ऐकमत्य श्लोक है, उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल कुछ भी नहीं है।
दरअसल योग के श्लोक के बारे में भी केरल के बीजेपी और सीपीएम के बीच एक नया विषय आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन से केरल में वामपंथी सरकार आई है, उस दिन से दोनों पक्षों के बीच किसी न किसी विषय पर हर रोज झड़प होती आ रही है, और ऐसा लगता है कि ताजा विवाद भी उसी झड़प की नई कड़ी है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और अब चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर में मड़कम हिड़मे नामक एक आदिवासी लड़की के शव का फिर से पोस्टमार्टम किया जाएगा। आरोप है कि गांव में धान कूट रही मड़कम को सुरक्षा बल के जवान घर से उठाकर ले गए थे और कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में आम आदमी पार्टी और मड़कम के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शव का फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
सुकमा जिले की पुलिस ने पिछले मंगलवार को दावा किया कि माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मड़कम हिड़मे नामक एक कथित हार्डकोर महिला माओवादी मारी गई है। इस खबर के साथ पुलिस ने कथित माओवादी मड़कम हिड़मे की जो तस्वीर जारी की, उसे लेकर विवाद शुरू हो गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मड़कम हिड़मे गांव की एक सीधी साधी लड़की थी, जिसे पुलिस गांव से उठाकर ले गई और फिर मड़कम के साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया और मड़कम को गोली मारकर उसे एक नई वर्दी पहना दी गई, जबकि वर्दी पर एक भी गोली के निशान नहीं हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संकेत ठाकुर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसके बाद सोमवार को मड़कम हिड़मे के परिजनों ने भी हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए मामले की सुनवाई की मांग की। मेरे सामने से मेरी बेटी को उठा कर ले गए। मैंने बेटी को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी मारा, पीटा और बेटी को लेकर चले गए। अगले दिन पुलिस ने कहा कि आकर बेटी की लाश ले जाओ। कथित पुलिस मुठभेड़ में मारी गई मड़कम हिड़मे की मां के शब्द। मड़कम हिड़मे के मामले में याचिकाकर्ता के वकील अमरनाथ पांडे का कहना था कि पुलिस ने झूठे मुठभेड़ में गांव की आदिवासी लड़की को मार डाला।
क्लियर है, उनके मदर फादर का कहना है कि बच्ची को घर से उठा के ले गए थे और जो डेड बॉडी को जब इन लोगों ने दफन किया है तो उनको इस बात का पूरा पूरा यकीन हो रहा है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है और उसको गोली मारी गई है रेप करके, और वो जानते हैं कि उनकी बिटिया जो है नक्सली नहीं है, तो जो गोली मारी गई है वो फेक इनकाउंटर है।
बस्तर की आदिवासी नेता सोनी सोरी ने कहा कि मड़कम हिड़मे जैसे मामले लगातार बस्तर में सामने आ रहे हैं।
ये पुलिस हमेशा हर बार गांव की ग्रामीण लड़कियों को मार के नक्सल होने का दावा करती है, तो ये भी उन्हीं में से कहानी है भीड़मे की आई है अभी। तो ये बस्तर में तो आए दिन मतलब कम होने के बजाय हर समय हर दिन बढ़ते जा रहा है। जो कितने मामले हैं जो बस्तर में आज दब जाती है, तो हिड़मे का ये है कि उसको एक नक्सल के नाम से ये क्या गोरखा जंगल में मुठभेड़ हुआ है, जबकि उसमें कोई मुठभेड़ भी नहीं है, फर्जी है।
इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। हालांकि पुलिस के एक अधिकारी ने दावा किया है कि हाईकोर्ट में जो हलफनामा पेश किया गया है वह सही नहीं है। मतलब साफ है कि अगर पुलिस के दावे में कोई दम है तो मड़कम हिड़मे की मौत का मामला अभी और उलझ सकता है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और मेरे सहयोगी सलमान रावी अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी बताएं सलमान, क्या है, क्या कहते हैं आपके अखबार?
इकबाल साहब, मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूँ कि अंग्रेजी अखबार और हिंदी अखबार बिल्कुल अलग अलग तरह से हैं। जहाँ हिंदी अखबारों में योग, जाहिर सी बात है कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और तमाम अखबारों की सुर्खियां हैं, खबरें हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, वहीं अंग्रेज़ी अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सिर्फ एक तस्वीर कैरी की हैं अंग्रेज़ी अखबारों ने। और सबसे इसमें स्टेट्समैन एक अपवाद है जिसमें एक समाचार भी छपा है तस्वीर के साथ। मेरे हाथ में सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है जिसमें कुछ मुसलमान बच्चियों का जो दुपट्टा ओढ़े हुए हैं और योगा कर रही हैं, ये एक स्कूल है मुंबई का, وہاں کی یہ تصویر چھاپی ہے. اور ہندوستان ٹائمز میں جو بڑی خبر ہے, حالانکہ مجھے اس بات پر بھی تعجب ہے کہ جیسے کہ آپ نے سماچار میں سنایا ابھی کہ 20 سیٹلائٹ لانچ ہو رہے ہیں, بڑا دن ہے بھارت کے لیے, لیکن کسی اخبار کے مکھ پرشٹھ پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. بہرحال جب بات ہوتی ہے اخباروں کی تو اب ہندوستان ٹائمز میں جو خبر ہے وہ ہے سورو گانگولی, وی وی ایس لکشمن اور سچن تندولکر جو اپنا دماغ لگا رہے ہیں کہ کوچ کو ڈھونڈنے کا. جی تو وہ خبر ہے اس میں, اس میں کئی نام بھی دیے گئے ہیں کہ کون کون ہو سکتے ہیں کوچ. تو یہ خبر ہے ہندوستان ٹائمز کی. ہندو اخبار میں بھی جو ہے اس میں تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ یوگ کی کوئی تصویر پیش پر نہیں ہے نہ خبر ہے, لیکن ایک چیز ہے اس میں کہ اڑتا پنجاب کے بارے میں اس میں ایک خبر آئی ہے کہ فار اڑتا پنجاب لائف بائی 100 کٹس ان پاکستان. یہاں تو ایک کٹ کے بعد وہ فلم آ گئی, لیکن پاکستان میں اسے 100 کٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے کیونکہ ڈرگ کا معاملہ آروپ لگتے رہے کہ پاکستان سے اسمگلنگ ہو کر آ رہی ہے, تو اس وجہ سے وہاں کے سینسر بورڈ نے 100 کٹ لگائے ہیں اس میں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سلمان خان کا جو بیان تھا وہ معاملہ بھی کافی تل پکڑا تھا کل سارا دن ٹویٹر پر, سوشل میڈیا پر, تو اس کی جھلک بھی اخباروں میں ہے لیکن بہت پرومیننٹلی نہیں ہے, بہت چھوٹی سی خبر ہے.
جی بہت شکریہ سلمان آپ کا اخباروں کی سمیکشا کا. اور اب بات کھیل کی. کل بھارتی کرکٹ ٹیم کے کوچ پد کے دعوے داروں کے انٹرویو ہوئے جن میں پورو کپتان روی شاستری, انل کمبلے, لال چندر راجپوت اور پروین آمرے شامل ہوئے. آج بھی کوچ بننے کے اچھک کھلاڑیوں کے انٹرویو جاری رہیں گے. کوچ کی دوڑ میں کس کی دعوے داری کتنی مضبوط ہے بتا رہے ہیں آدیش کمار گپت.
کل بھارت کے پورو کپتان سورو گانگولی اور دگج بلے باز رہے وی وی ایس لکشمن کولکاتا میں موجود تھے, اور سچن تندولکر لندن سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان انٹرویو سے جڑے تھے جن کے مادھیم سے اگلے کچھ دنوں میں بھارتیہ کرکٹ ٹیم کے کوچ کا فیصلہ ہوگا. اس مہتوپورن پد کے لیے بی سی سی آئی نے دیسی ودیشی کھلاڑیوں سے آویدن بھی منگوائے تھے, جس کے بعد بھارتی ٹیم کا کوچ بننے کی دوڑ میں حال ہی تک ٹیم ڈائریکٹر کے روپ میں جڑے رہے پورو کپتان روی شاستری, چینکرتا سندیپ پاٹل, وکرم راٹھور, سنجے بانگڑ, پروین آمرے, انل کمبلے, بلوندر سنگھ سندھو اور وینکٹیش پرساد جیسے پورو کھلاڑی بھی شامل تھے. دیسی ودیشی کھلاڑیوں کے آویدنوں کی چھٹنی کے بعد کوچ بننے کے اچھک 21 دعوے داروں کا نام بی سی سی آئی کے سامنے آیا. ان میں سٹورٹ لا اور ٹام موڈی جیسے آسٹریلیائی کھلاڑی بھی ہیں. کل پروین آمرے, لال چند راجپوت, انل کمبلے اور روی شاستری کے انٹرویو ہوئے. خبروں کی مانے تو انل کمبلے کا انٹرویو سب سے ادھک دیر تک چلا. آخرکار کوچ کی کھوج کس کے نام کے ساتھ پوری ہوگی, اسے لے کر جانے مانے کرکٹ سمیکشک ایاز پہ من کہتے ہیں
کہ اچھے نام ہے. سندیپ پاٹل تو پہنچے ہی نہیں یا انہیں بلایا نہیں گیا, کچھ ایک وہاں پر وواد ہے. فورن پلیئرز ہیں, ٹام موڈی بھی ہے, اینڈی مولز ہے, ٹریور پینی ہے, تو یہ سب کوچز ان کے پاس کافی تجربہ ہے ایز اے کوچ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں پلیئرز کی پسند ہے کہ اس بار ایک کوئی انڈین کوچ بننا چاہیے. حالانکہ پروین آمرے, لال چند راجپوت وغیرہ ان کے پاس کوچنگ ایکسپیرینس بھی ہے, انل کمبلے کے پاس کوچنگ ایکسپیرینس ہے ہی نہیں, لیکن آپ انہیں اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ اور روی شاستری کا ٹریک ریکارڈ بہت ہی بہترین ہے, تو انہیں بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو مجھے لگ رہا ہے یہ ایک دو گھوڑے کا ریس بن رہا ہے, اب دیکھنا ہے کون جیتتا ہے.
اب بھارت کی ایک دیوسیہ کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کی بات بھی سنی جائے.
ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے ہمارا کلچر جو سمجھے, مور دین ہندی انگلش. آئی تھنک جن کوچز نے ہمیں بہتر سمجھا ہے, یو نو اٹ ہیز ایکچولی گراؤنڈ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا فرق کافی پڑا ہے.
وہیں بھارت کے پور کوچ رہ چکے مدن لال کو تو روی شاستری کا دعویٰ سب سے ادھک مضبوط لگتا ہے.
کچھ کہا نہیں جا سکتا کیا ان کے من میں چل رہا ہے. روی شاستری ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بھارتی کپتان وراٹ کوہلی بڑے کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ, اور ایک ایسا کھلاڑی جو کرکٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کافی سالوں سے. اگر وہ کوچنگ نہیں کر رہے تھے تو وہ کمنٹری کر رہے تھے, پھر بھی کرکٹ کے نزدیک رہے ہیں وہ, تو چانسز ان کے ہی لگ رہے ہیں انلیس بی سی سی آئی میں کوئی سرپرائز دے دے.
اب گیند سیدھے سیدھے بی سی سی آئی کے ہی پالے میں ہے, جو 24 تاریخ کو اپنی کاریکاری بیٹھک میں کوچ کا اعلان کر سکتی ہے. تب تک انتظار کرنا ہی ٹھیک رہے گا.
یہ تھے آدیش کمار گپت. اور چلنے سے پہلے ایک دفعہ سن لیتے ہیں پرمکھ سماچار.
بی بی سی سماچار. یورپین یونین میں برٹین بنا رہے یا نہیں, اسے لے کر بی بی سی ون میں 6,000 لوگوں کے سامنے بحث ہوئی, جس میں یورپین یونین میں رہنے کی وکالت کرنے والے کیمپین ریمین اور الگ ہونے کی وکالت کرنے والے کیمپین لیو نے حصہ لیا. ब्रिटेन के लोग कल तय करेंगे कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली से सटे एक शहर में हुए धमाके में 25 लोगों की मौत हो गई है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि धमाका कैसे हुआ। इराक में अमरीकी फौज के एक कमांडर ने कहा है कि इराकी फौज अब तक फलूजा के एक तिहाई हिस्से पर ही कब्जा कर पाई है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।